हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी मंदा देवी जी पहुंच चुके हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी जानते हैं विदेश सेवाओं के लिए दादी जानकी 1974 में गए थे लंदन में। बस दादी जी के वहां जाने के कुछ ही वर्षों के अंदर बहुत सारे बाबा के अनन्य बच्चे निकले, उनमें से एक है हमारी मंदा दीदी। बहुत सारी जो विदेश की सेवाओं की स्थापना के रतन है और बहुत दादी जी की पालना ली हुई है। उसके बाद तो कैसे विदेशों में भी सेवाओं ने खूब विस्तार को पाया और रिट्रीट सेंटर्स भी खुलते गए। तो वहाँ पे जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है उसको भी आप संभालते हैं, और भी एक दूसरा रिट्रीट सेंटर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वर्दिंग में एक लाइट हाउस है वो भी आप देखते हैं। और बहुत सारी दादी के साथ, हमेशा मंदा दीदी कहते दादी के साथ, तो दादी ने जो कुछ कहा उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम हमेशा भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे। तो बहुत ही सेवाओं की लगन और उतना ही बाबा के ज्ञान योग की गहराई में भी उतरते हैं। तो आज हमारे बीच में हैं आज भट्टी का जो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, संपन्नता की ओर चलना वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं, छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। तो आज हमने दीदी को टॉपिक दिया है आज की ही मुरली से, सैक्रीन की एक बूंद कितनी मिठास देती है। ऐसे ही बाबा के ज्ञान का कौन सा एक अक्षर है जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, मन मना भव। तो आज इसी विषय की गहराई को हम सबके सामने रखेंगे आदरणीय दीदी जी, और उसी के साथ साथ भट्टी का लक्ष्य भी आपको क्लियर करेंगे। तो अभी हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति। आप सभी को यहाँ देख के जैसे पता चला कि आज आपका पहला दिन है, भट्टी कहो रिट्रीट कहो उसका उद्घाटन है, तो हमें भी हमारे ही सेवा स्थान की याद आ गई, क्योंकि हमारे पास हर वीकेंड को रिट्रीट होती है। अभी तो कुछ सालों से नहीं है क्योंकि हमारा रिट्रीट सेंटर थोड़ा रिपेयरिंग का काम था, थोड़ा तो क्या बहुत बड़ा रिपेयरिंग का काम था, क्योंकि अभी 4 साल पूरे होने वाले हैं उसको भी। तो इसलिए आपको देख के याद आया। कि कैसे हम भी रिट्रीट की तैयारियां करते थे और आप जैसे भाई बहनों को मिलके हमें बहुत ही खुशी होती थी। तो आज वही खुशी हमारे लिए प्रकट हो रही है आप सबको देख के। वैसे इंदिरा दीदी ने बोला कि मन मनाभव एक छोटा कदम है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ यह छोटा कदम है। मन मनाभव बहुत ही बड़ा, श्रेष्ठ और सुंदर कदम है। भगवान अपने बच्चों को कहते हैं, अपने मन को मेरे मन में लगाओ। कितनी सुंदर बात है, अपने मन को भगवान के मन में लगाना। वैसे भक्ति में कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तो बाबा हमें समझाते हैं कि वैसे आत्मा परमात्मा से कभी मिल नहीं जाती हैं, मर्ज नहीं हो जाती हैं, लेकिन मैं कहूंगी लेकिन, मैं समझती हूँ आप सबका भी अनुभव जरूर होगा कि जिससे जब भी आप बाबा की यादों में, मस्ती में, प्यार में लिप्त हो जाते हैं, तो क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है, क्या अनुभव होता है? ऐसे लगता है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं। मैं समझती हूँ हम सभी को यही भासना आती है कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए, हम भी परमात्मा के प्यार में इतना खो जाते हैं। तो हम कौन, परमात्मा कौन, बाबा कौन, भगवान कौन, आत्मा कौन, मैं समझती हूँ वो डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो इतनी ही सुंदर ये मन मनाभव की बात भी है कि अपने मन को कैसे परमात्मा में लगाए, कैसे बाबा के प्यार में मर्ज करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन बाबा के मन में, इट्स वेरी स्पेसिफिक, मन मेरे मन में लगाओ, तो सबसे पहले तो मन को समझना होगा, समझना होगा ना। हम सब के जीवन में उलझन पैदा करने वाला कौन है, मन ही है। शांति लाने वाला कौन है, मन ही है। तो सबसे पहले मन क्या है, क्या मन का पाठ कहो या क्या उसका राज है। कहते हैं आत्मा है, आत्मा में है तीन फैकल्टीज, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि एक ऐसी चीज है, वैसे कहते हैं उसमें रैशनलाइज होती है बुद्धि में, वो तेज बुद्धि जो होती है उसमें फीलिंग्स की बात नहीं आती है, लेकिन मन में फीलिंग्स की बात आती है। मन जैसे जैसे चलता है तो मन की असर अपने फीलिंग्स पर आती है और अपने फीलिंग्स की असर मन के ऊपर आती है। कोई भी संकल्प आप एक ही संकल्प करते जाओ, विचार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो आप उस विचार में जितना जितना खो जाएंगे उतना ही उस विचार अनुसार हमारी फीलिंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि संकल्प यानी कि मन का संबंध है दिल से। दिल में प्यार पैदा होता है, दिल में फीलिंग्स पैदा होती हैं, और वो भी ये दिल की बात नहीं है, ये फिजिकल ऑर्गन जो दिल है उसकी बात नहीं है, आत्मा की फीलिंग्स की बात है। तो अगर हमें, हम चाहते हैं कि हमारा मन परमात्मा में लगने के लिए लायक हो, उस मन को हमें क्या करना होगा, ये बात सोचने की है। वैसे तो हम समझते हैं मन चलता रहता है, मन घोड़ा है, मन को हम अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग समझते हैं। मेडिटेशन में बैठेंगे तो लोग ऐसे ही कहेंगे कि मन को ऐसे ऐसे मन में संकल्प न आए वो हम कैसे करें। हम जब मेडिटेशन सिखाते हैं, हमारी बड़ी बहनें सब बैठी हैं, तो हम क्या कहते हैं, वैसे मन संकल्प न करे ये हो नहीं सकता है। मन में संकल्प पैदा होंगे ही, विचार पैदा होंगे ही, लेकिन किस प्रकार के विचार, कितने विचार, कौन सी स्पीड के विचार, ये हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले अगर मन अगर हमें परमात्मा को लगाना है, तो एक तो परमात्मा मन की समझ और दूसरी परमात्मा की समझ। और ये भी समझ ऐसी बुद्धि की समझ नहीं है। हम कुछ न कुछ बातें आपको आज सुनाएंगे, अपने अनुभव की बातें सुनाएंगे, लेकिन वो जानते हुए भी आपको भी अपने ही प्रयास से अनुभव करना होगा। हमें सुनने की आदत अच्छी हो जाती है, सुनना अच्छा लगता है, और सुनने समय भाषणा भी आती है, फिर बाहर जाके वो भूल जाता है। तो इसलिए जैसे आप सुनते जाओ तो ये बात ध्यान में रहे कि हमें ही भी अपने लिए यही अनुभव अपने आप करना होगा। तो एक तो है मन के विचार, मन को अपने कब्जे में करने के लिए मन में संकल्प जितने तेजी से चलते हैं उतने ही हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। आप गाड़ी तेजी से चलाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल में नहीं रहेगी गाड़ी। अगर अचानक कुछ आ गया और आपको रास्ता बदलना पड़ा या कुछ करना पड़ा, तो जितनी तेजी से गाड़ी जा रही है उतना ही गाड़ी को कंट्रोल में लाना मुश्किल होता है। उसी अनुसार अगर हमारा मन बहुत फास्ट चलता है, स्पीड में चलता है, तो उस मन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और स्पीड में जो चलने वाले विचार होते हैं ना, वो कैसे विचार होते हैं, फालतू के विचार, नेगेटिव विचार, औरों के बारे में विचार, पास्ट के बारे में विचार, स्पीड वाले विचार। ऐसे कहते हैं कि एक घंटे के अंदर 60,000 थॉट्स, 60,000 विचार आपको आ सकते हैं, 60,000, बहुत सारे संकल्प हो गए। ऐसा मन कभी परमात्मा के मन में लग सकता है? परमात्मा क्या है, कौन है, बाबा कौन है? बाबा तो है शांति का सागर। ऐसा शांति का सागर है कि उसके वाइब्रेशन ही हमें शांत कर देते हैं। और ऐसे शांति के वाइब्रेशन वाले मन में अगर हमें अपना मन लगाना है, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, कितनी शांति वाला होना चाहिए। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो हमारे मन में वो कैपेसिटी है, इतना हमारा मन शांत हो, इतना शांत हो कि जब चाहे, जिस समय चाहे, जिस प्रकार से चाहे, इस प्रकार से विचार अपने आप मन में पैदा हो। आजकल क्या है, बहुत संकल्प करते हैं, कोई भी कोई कार्य करना होता है ना, तो बहुत सारी मीटिंग्स होगी, बहुत सारी चर्चा चलेगी, बहुत विचारधारा लोगों की सुनेंगे, तब फिर कुछ बात का निर्णय करेंगे। क्यों? और आजकल तो कहते हैं ना कि कोई, अभी तो टीम्स होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग होना चाहिए, यानी कि सबका विचार अभिप्राय लिया जाए हर बात में। क्यों? क्योंकि किसी को किसी के विचार के ऊपर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि कैसा किसी का मन है पता ही नहीं है। तो जितना जितना मन हमारा तेजी से चलता है, उतना ही मन में अशांति, और वो मन की अशांति हमारे दिल को भी अशांत करेगी, हमारी परिस्थिति को भी अशांत करेगी, हमारे संबंध को भी अशांत करेगी। तो सबसे पहले हमको हमारे विचार को अपने कंट्रोल माना, फोर्स नहीं, फोर्स से कोई बात नहीं होती है, जबरदस्ती से कोई बात होती नहीं है, समझ से, ज्ञान से, पहचान से, जान से। हमें अपने मन को पहले स्लो बनाना है, धीरे से संकल्प करना सिखाना है, और धीरे से संकल्प करने के लिए क्या करना होगा, पावरफुल संकल्प करना होगा। पावरफुल संकल्प तेजी से नहीं आते हैं, एक साथ जोर जोर से नहीं आते हैं, पावरफुल संकल्प होंगे, एक ही संकल्प आएगा, और उस एक संकल्प को अमल में लाने के लिए, समझने में लाने के लिए, जानने के लिए आपको कितना समय चाहिए। बीज जो होता है ना, अगर बीज को जब जमीन में उसको बोया जाता है, तो उस बीज को बोने के समय तो बो लिया, उसको फलीभूत होने में कितना समय लगता है, मास लग सकते हैं, उसको पानी चाहिए, धूप चाहिए, समय चाहिए। इसी प्रकार से पावरफुल संकल्प को, जो संकल्प सफलता प्राप्त करने वाला संकल्प है, उस संकल्प को पैदा करने के लिए भी हमारा मन शक्तिशाली हो। मन में कब वो शक्ति नहीं होती है, जब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, यानी मन बहुत भटकता है। भटकना माना ये भी कि जल्दी हमारा अटेंशन बाहरता में आ जाता है, ऐसा मन कभी परमात्मा में लग नहीं सकता है। बाह्यता में जितना जितना हमारा मन आ जाता है, उतना ही मन में शक्ति भी कम होती है। तो बाबा ने हमें इन सब बातों का इशारा दिया हुआ। आजकल तो टेलीफोन्स पे हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ब्लॉग्स है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब बातों में आप कितना समय, आप कौन, कितने जने हैं यहां अपने साथ फोन लेकर बैठे हैं, कितना ही समय लगता है, बहुत सारे होंगे वो तो मैं जानती हूं, लेकिन कितना समय, अगर हम आप फ्री बैठे हैं ना, कितना समय लगता है बिना फोन चेक करने में। चाहे फोन देखा मैसेज आता है या नहीं आता है, ध्यान जाता है। तो वो मन कैसा, जिस मन को सेकंड से भी कम समय लगता हो, लेकिन एक सेकंड 60 सेकंड का एक मिनट बनता है। तो सबसे पहले मन को शांत करना, मन को पावरफुल संकल्प करना सिखाना, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। अगर हम परमात्मा की संतान हैं, अगर नहीं हैं ही, लेकिन अगर हम इतनी गहराई से अपने आप को बाबा का बच्चा समझते हैं, तो मन को शांत करना हमारे फर्ज हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारी जवाबदारी है। सबसे पहले खुद के लिए जवाबदारी है, फिर है संसार के लिए ये जवाबदारी। आजकल दुनिया में लोग बहुत अशांत हैं और पिछले 2 साल से पैंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण, विदेश में तो हमने यही देखा कि लोग बाहर नहीं जा सकते थे, घर में बैठ के अपनी जॉब करनी थी, तो कई लोग बहुत बोर हो गए, कई लोग बहुत जैसे वो तनाव में आ गए, कई लोग तो बहुत पसंद करने लगे कि कुछ हमारे जीवन में मिस था। अभी वो मिस नहीं है, अभी उनको ऐसे लगने लगा कि हमको इसी प्रकार से अपने आप को चलाना चाहिए, दौड़ भाग के जॉब पर जाना, दौड़ भाग के जॉब से आना, फटाफट काम करना, 10 घंटों का काम 5 घंटों में करना। ये इन सब बातों का असर हमारे मन पे और हमारे खुद के वाइब्रेशन में पड़ते हैं। तो ऐसा मन, सबसे पहले हम ट्रेनिंग देंगे अपने आप को, अपने मन को साइलेंस में ले जाने की। साइलेंस माना ये नहीं सोचना ही नहीं, साइलेंस माना एक संकल्प करना और उस एक संकल्प के अनुभव में व्यस्त हो जाना, और कितना समय फिर हम उस अनुभव में रह सकते हैं, एकाग्र होकर रह सकते हैं, वो है अभ्यास, वो है प्रैक्टिस। जितना जितना अपने आप को एक ही संकल्प में स्थिर करेंगे तो मन में भरपूरता का अनुभव होगा। हम जब साइलेंस की बात करते हैं तो वो रुखी रुखी साइलेंस नहीं, और बोर हो जाए फिर कहे चलो किसी से बात करे, चलो कुछ फोन करे किसी से या किसी से मिले, वो जो खालीपन वाली साइलेंस, जबरदस्ती वाली साइलेंस है ना, उससे बुद्धि और ही भटक जाएगी। उससे जैसे लगेगा कि हम अपने आप को फोर्स से चला रहे हैं, लेकिन वो साइलेंस, वो संकल्प, और उसमें हमको कौन सी बात मदद करती है, हमारी आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मीय अभिमान की स्थिति मैं आजकल यही समझती हूं, आप सभी पुराने भाई बहन होंगे, अगर पुराने नहीं भी हैं, चलो आप कुछ नए भी हैं, तो अभी पुराना जो अभ्यास था ना, वो प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस मैं समझती हूं बदल गई है। क्यों? क्यों अभी समय बहुत कम है। पहले हम करते थे आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, फिर आत्मा शरीर से पार जा रहा है आकाश की तरफ, सूर्य चंद्रमा से पार, फिर हम परमधाम में गए। ये योग, ये है बचपन का योग। अभी समझ आ गई, पता चल गया, संकल्प आए और उस स्थिति में हम स्थित हो जाए। और वैसे कहां जाने की बात नहीं है, मैं समझती हूं अभी ये समय है जहां हमें कहां जाने की बात नहीं है, लेकिन जितनी हमारी आत्म अभिमानी स्थिति जितनी ही पावरफुल होगी, तो ये शरीर के भान से अपने आप हम अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, परमधाम नीचे आ जाता है। हम परमधाम में नहीं जाते हैं, अभी समय है परमधाम को नीचे ले आने का। योग में बैठे हैं तो परमधाम को नीचे ले आएंगे। कर्म करते हुए हमारी स्मृति ऐसी हो कि सूक्ष्म वतन को हम नीचे ले आए, ये हमारा योग का अभ्यास। तो मन जितना जितना इस प्रकार की आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहने के लिए नेचुरल हो जाता है, तो वो खुद के लिए प्यार कहो, स्वमान कहो, वो जैसे सूक्ष्म तेजी से पुरुषार्थ माना ये नहीं कि जबरदस्ती हो और फोर्स हो, तेज माना सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म। संकल्प करते ही अपने वाइब्रेशन बदल जाए, वाइब्रेशन बदल के शरीर भी जैसे एक मोमबत्ती के समान पिघल जाए। भले शरीर में बैठे हैं लेकिन शरीर जैसे है ही नहीं। आज किसी ने मेरे को बोला, मेरे को अशरीर बना दो। मैंने कहा मैं अशरीर नहीं बना सकती हूं। तो उसने मेरे को बोला चलो हम योग करते हैं। तो हम दोनों बैठे थे आपस में ऐसे ही साइलेंस में, तो हमने कुछ कमेंट्री की तो हम दोनों अशरीर हो गए। अशरीरी स्थिति जितनी हमारी बढ़ती जाती है तो वो मन, वो अशरीरी स्थिति, जैसे परमात्मा कौन है, परमात्मा भी शरीर से परे हैं, तो हमारे वाइब्रेशन और बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की स्मृति और हमारी स्मृति, इंग्लिश में उसको कहते हैं रेजोनेंस, मिलती जुलती है। कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा होता है ना उसी अनुसार जो और होते हैं ना उसको आकर्षण होती है आपस में। हम जितना जितना अपने आप को, अपने वाइब्रेशन को, अपनी मन की स्थिति को, अपने दिल की स्थिति को साफ बनाते जाएंगे, बाबा जैसी बनाते जाएंगे, तो हमें भी बाबा के तरफ खींच होगी और बाबा को भी हमारे तरफ खींच होगी। एक बारी हमने दादी कुमारका को प्रश्न पूछा, बहुत सालों की बात है, 20-25 शायद 30 साल पहले की बात होगी। हम देखते थे दादी बहुत ही नेचुरल थी, उठेगी बैठेगी हंसेगी बहलेगी, बड़ों के साथ बड़ी, छोटों के साथ छोटी, फिर भी जैसे दादी से बाबा की भाषण आती थी। तो हमने दादी को पूछा, दादी आप कैसे बाबा को याद करते हो? तो दादी ने बोला, मैं बाबा को थोड़ी याद करती हूं, बाबा मुझे याद करता है। अगर बाबा मुझे याद करता है तो मुझे याद करने की जरूरत ही क्या है। मुझे बाबा की याद पहुंचती है और मैं बाबा की याद में खो जाती हूं। कितनी सहज बात। वो कब होगा? जब हम बाबा के समान हमारी स्मृति मिलती जुलती है। भले योग में सिर्फ है, व्यवहार में अभी तक नहीं आती है, लेकिन जितना जितना योग में भी स्मृति आने से, जितनी जितनी हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी सूक्ष्म बनती जाती है, तो हमें बाबा की तरफ खींच, बाबा को हमारे तरफ खींच, ये भासना हमें आनी चाहिए कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अमृत वेले हम याद करते हैं इसी प्रकार से, कभी कुछ कारण से, वैसे तो जानबूझ के कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं, लेकिन कभी ट्रैवलिंग के कारण या कुछ तबियत के कारण, कभी इत्तफाक से ऐसा हो गया तो हमें यह होता है कि बाबा बैठा होगा, बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, बाबा इंतजार करके बैठे रहे। तो ये बात ये है, ये फीलिंग्स की बात है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, शब्दों की बात नहीं है। बाबा इंतजार कर रहे हैं, हम अंदाजा लगाए वो अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से वो फीलिंग आए कि अगर मैं नहीं होगी तो मैं मिस करूंगी, मेरे लिए मिस हो जाएगा। तो अपने मन को मन मना भव बनाने के लिए, दादी के लिए, दादी जानकी के लिए, हर एक बात में दादी को बाबा पहले याद आएगा। अगर हमको अपने मन को मन मना भव करना है तो सिर्फ योग की स्थिति में नहीं करेंगे ना, चलते बैठते उठते खाते पीते सोते व्यवहार करते, बाबा इज माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि बाबा मेरे आमने सामने पहले है। अगर कुछ बात अच्छी हुई ना तो दादी कहेगी बाबा ने किया। अगर दादी अच्छी कोई बात अच्छी नहीं भी हुई या ऐसे नहीं अच्छी नहीं हो, कुछ ऐसी भी बात हो गई तो दादी कहेगी होना नहीं था इसलिए नहीं हुआ। हर बात में बाबा, हर बात में बाबा, किसी ने कुछ अच्छा किया तो बाबा ने कराया। तो ये भी एक मन मना भाव की बात है, मन को बाबा में लगाना। वो हमारे व्यवहार में भी, जब भी हम किसी की विशेषता देखेंगे तो क्या अनुभव होगा, कहते हैं ना, इफ यू हैव रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स एवरीथिंग इज पिंक, यानी कि अगर पिंक कलर के आप चश्मे पहनेंगे तो सब पिंक दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर हम बाबा की दृष्टि से सब कुछ देखें, सबसे पहले तो हमें सीखना होगा अपने आप को बाबा की दृष्टि से देखना। मैं आपको सुना रही हूं लेकिन मैं अपने आप को भी सुना रही हूं साथ साथ में। हम कहां तक अपने को बाबा की दृष्टि से देखते हैं? रोज मुरली में भगवान की दृष्टि अपने बच्चों के लिए क्या है वो हमें जानने को मिलता है। रोज मुरली में वैसे आप देखेंगे अपने आप अभ्यास होता है मन को बाबा में लगाने का। एक तो हम बाबा के सामने बैठे हैं, आज साकार बाबा नहीं है, दादियां नहीं है, भले कोई भी मुरली सुनाने वाला है लेकिन मुरली किसके किसकी सुन रहे हैं? बाबा की मुरली सुन रहे हैं। कौन हमारे सामने बैठे हैं? बाबा हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन आप सोचे एक सेकंड के लिए कितनी सूक्ष्म बात है। अगर हम अपने देह भान से मुरली सुनेंगे ना तो वो भासना नहीं आएगी, लेकिन मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं आत्मा, वो आत्मा, ये जो पर्सनालिटी मेरी है ना, ये जो मास्क मैंने पहना है ना, उस मास्क को अलग करके सुनने वाली कौन है? आत्मा। और कौन किसको सुन रही है? बाबा का तो और कोई रूप है ही नहीं, बाबा का तो रूप ही है ज्योति बिंदु, एक श्रेष्ठ उत्तम ते उत्तम चैतन्य निस्वार्थ प्रेम की शक्ति, वो मेरे सामने हाजुर नाजुर है। और आप जब भी आपको भगवान का अनुभव होता है तो कैसा अनुभव होता है, आपने कभी नोट किया है? ऐसे लगता है जैसे कि सब कुछ अच्छा है, सब कोई अच्छा है, सब कुछ अपने भले के लिए है। शिव को कल्याणकारी शिव कहा जाता है। तो हर बात में जब हम कल्याण समझते हैं ना तो हम मनमना भाव है, हर बात में कल्याण। कल्याण क्यों? क्योंकि हर बात का बीज इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है परमात्मा, और उस बीज की विशेषता है कल्याणकारी। झाड़ कोई आम का झाड़ होगा तो आम का बीज होगा तब तो आम उगेंगे ना, और उस बीज के गुण सारे झाड़ में होंगे, पत्ते भी उसके अलग होंगे, उसका उसकी जो शाखाएं होगी वो भी अलग होगी, उसका फल भी अलग होगा, हर एक बीज का अलग होगा। और हम उस झाड़ के पत्ते हैं, जिस झाड़ का बीज है परमपिता परमात्मा, और उस बीज का गुण है कल्याणकारी। तो हम भी कल्याणकारी, और जो भी ड्रामा में बात होती है ना वो भी कल्याणकारी, और पांच तत्व भी, भले आज पांच तत्व भी तमोगुणी हो गए हैं तो बहुत ही अपना जोश दिखाते हैं, फिर भी उसमें भी कल्याण। जब हम कल्याणकारी दृष्टि से देखते हैं, कल्याण का, कल्याण की फीलिंग आती है, अनुभव होता है, आज नहीं तो कल वो हम देख ही लेंगे कि अच्छा ही हुआ, तो भी क्या हुआ हमारे मन को, हम मन मना भव उस समय है ही। आज अभी हम बाबा के कमरे में बैठे थे तो अचानक, वैसे तो आप कहेंगे जानते हैं बाबा, जैसे बाबा मुझे बता रहे थे सब कुछ अच्छा है, आप यही समझो सब कुछ अच्छा है, तो मुझे फीलिंग आई, वो भासना आई। कई परिस्थितियां, 2021 गया तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ ऐसी भी बातें हुई जो कुछ ऐसे ही थी, तो भी जैसे बाबा कह रहे हैं सब कुछ अच्छा हुआ। और ये भासना जब आती है ना तो अपने आप हमको किसकी याद आती है, किसकी याद में हम व्यस्त हो जाएंगे, बाबा की याद में ही हम व्यस्त हो जाएंगे। तो मन को बाबा में लगाना, माना दिल को बाबा के में लगाना, हमारी वृत्ति को बाबा में लगाना, हमारी वृत्ति को बाबा की वृत्ति से समझना, हमारी दृष्टि को भी बाबा के दृष्टि बना के देखना, बाबा की दृष्टि अनुसार हमारी दृष्टि बनाना, ये भी एक मन मना भव की बात है। वैसे बातें तो बहुत है लेकिन विषय ऐसा है, ऐसा लगता है हमें भी मन मना भव की स्थिति का अनुभव करना चाहिए। तो वैसे इंदिरा बहन ने कहा है एक कदम है, लेकिन ये एक छोटा कदम नहीं है, सारी जिंदगी भर इस कदम को लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, उसको और ही गहरा बनाते जाना। और इसके लिए एक बात और भी है, कौन सी बात है जो हमारे दिल को बाबा से हटा दे सकती है, और वो है सबसे बड़ी बात मोह। हमारा मोह भगवान में लग सकता है, मोह भगवान में लग सकता है, लेकिन भगवान ऐसी वो क्या कहते हैं, वो स्लिपरी हैं, ऐसा खिसक जाता है, वो मोह नहीं होने देगा, लेकिन प्यार जरूर होने देगा। तो अगर हमारी बुद्धि और कहां फंसी हुई है, किसी मनुष्य में फंसी हुई है, तो हमारा मन नहीं लग सकता है। तो ये सबसे बड़ी चेकिंग, अगर कोई परिस्थिति सामने आई तो सबसे पहले कौन याद आता है, बाबा याद आता है या कोई व्यक्ति याद आता है, फलाने पास जाए और फलाने से ये बात पूछे, या सबसे पहले चलो बाबा याद आए लेकिन मुरली भी उठा के देख लिया कि आज बाबा अगर इस परिस्थिति में मैं कोई भी मुरली उठाऊंगी ना मुझे जवाब मिलेगा। तो हमें इस प्रकार से बाबा को रेफरेंस बनाना है और बाबा के वाइब्रेशन को घड़ी घड़ी इमर्ज करते जाए, और ये जो भक्ति में यादगार हैं, वो यादगार हम बिल्कुल इसलिए है, क्यों भगवान हाजुर नाजुर है, कि हम भगवान को हाजुर नाजुर अनुभव करते हैं हमारी याद के आधार से। तो मैं समझती हूं हम थोड़ी देर थोड़ा कमेंट्री से योग करते हैं, मन मना भाव की स्थिति का अनुभव करते हैं, ठीक है। वैसे भी 7 से 7:30 का समय हम कभी मिस नहीं करते हैं योग के लिए। दादी हमेशा कहती थी जैसे अमृत वेल का योग हमारा पक्का होना चाहिए, इसी प्रकार से 7 से 7:30 का योग कभी मिस नहीं होना चाहिए। तो चलो आधा घंटा तो नहीं करेंगे, लेकिन 10-15 मिनट भी तो कर सकते हैं। ओम शांति। इस संगठन में बैठे हुए अपने मन को और अपने तन को स्थिर बनाते हुए इस स्थिरता में इस वाइब्रेशन में हमें फीलिंग आती है कि मैं आत्मा चैतन्य शक्ति शुद्ध शांत प्रेम स्वरूप इस वाइब्रेशन को इतना सूक्ष्म रीति से न सिर्फ हमारे आसपास लेकिन इस शरीर के अंदर भी वाइब्रेशन इतने फैल जाए कि कण कण में ये वाइब्रेशन शरीर की स्मृति से पार एक चेतनता की शक्ति में मुझे आत्मा के मन को शांत स्वरूप बना के शुद्धता की एनर्जी शुद्धता की वाइब्रेशन मैं हूं एक सांस में ये वाइब्रेशन भर जाते हैं मेरे नैनों से
ये वाइब्रेशन भी हर जगह फैल रहे हैं। और मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को आवाहन करते उनके मन में, उनका मन एक शांति का सागर, उनका मन एक बेहद निस्वार्थ प्रेम स्वरूप, ये प्रेम मेरे दिल को, मेरे मन को इतना ही समा लेता है कि मेरा मन परमात्मा के प्यार से भरपूर, बाबा मैं इस घड़ी के इंतजार में थी कि आप मेरे पास आए और मैं आपके पास आऊं और मेरा दिल मेरा मन मेरा सांस के प्यार आपके दिल में खो जाए, मेरा मन आपके मन से मिले, मैं सदा के लिए आपके प्रेम को अपने नैन अपने कर्म द्वारा संसार को दिखाओ। आपकी हाजरी इस घड़ी इस समय इस स्थान पर आना माना परम धाम हमारे पास आ गया। लाइक पवित्रता हमारे अंदर फैल गई, इसी इसी साइलेंस और लाइट की शक्ति से हम इस संसार को आपकी याद की शक्ति से परिवर्तन करके अपनी संपूर्ण अवस्था प्राप्त करके स्वर्ग को भद्रता पर लाएंगे।